मेरे साथ एक वाकया हुआ कि मैं जिम में था और मैं सारा दिन ना, मतलब उस वक्त मैं ट्रेनिंग दे रहा था, क्लाइंट्स थे मेरे ना, तो मेरा इधर ही नमाज का जब वक्त होता तो उधर ही पढ़ लेता था। तो हमारे जिधर मैं रहता हूँ वहाँ से ना एक शख्स आए, उनकी डायबिटीज़ काफ़ी बिगड़ी हुई थी, तो मैं उनको ना डायबिटीज़ उनको बता रहा, काउंसलिंग कर रहा उनको बता रहा। तो इसी दौरान ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी उम्र के थे, कहते आप भी उधर ही रहते हैं? मैंने कहा जी मस्जिद में नहीं देखा कभी आपको। तो कहा अब सर आप पहले अपनी डायबिटीज़ ठीक कर लें, मुझे बाद में जज करें, इस वक्त जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ वो आप ही के फ़ायदे की है। लेकिन वो बात मुझे इस तरह से हिट की कि ये नहीं कि उसने मुझे देखा, कि मैं ये सोच रहा था कि वो बुज़ुर्ग हमारे मस्जिद में बैठ के लोग ढूंढ रहे होते थे, ये भी नहीं आ रहा वो भी नहीं आ रहा। कोई बंदा अगर वाकई ही मस्जिद में जाता है तो उसका तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी जो इबादत करनी है, उसने जो अपना अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करना है उसके लिए जा रहा है। वो कौन होता है किसी को जज करने वाला? ये नहीं कि उसकी ये बात करना, जाहिर सी बात है यही था कि वो यही कह रहा था कि शायद मैं नमाज नहीं पढ़ता, या शायद मैं इबादत में कमज़ोर हूँ, या शायद मैं बेहतर मुस्लिम नहीं हूँ। तो ये तो बड़ा एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसी वजह से तो काफ़ी सारे जवान जो है वो भाग जाते।
लेकिन उमर बिन खत्ताब एक दफ़ा बैठे हुए हैं और एक सहाबी ने आके एक लड़की जो थी सामने से गुजरी है और बैठी हुई थी, नबी उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन मैं इस लड़की के बारे में जानता हूँ एंड उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुस्तनद वाक़िया है, ही सेड कि मेरा काम ज़ाहिर पे ज़र्ब लगाना है, अंदर की बातें जानना मेरा काम नहीं है। मेरे सामने एक हिजाबी औरत बैठी है, तूने दोबारा ये बात की तो ये इल्ज़ाम के तौर पे लूंगा मैं, और फिर तुझे पता है इल्ज़ाम की सज़ा क्या है, औरत पे तोहमत की इल्ज़ाम की सज़ा क्या है,
दुर्रे
उतना ही कोड़े जिसका इल्ज़ाम जिस सज़ा के लिए उसने इल्ज़ाम लगाया। सोचें ज़रा कि जिसको कहते ना उमर बिन खत्ताब होते तो टेरर से कांप रहे होते, वही लोग टेरर से कांप रहे होते कि जो लोगों को जज करते फिरते हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब के सामने जो ओपननेस दिखाई है, हज़रत अब्दुलरहमान बिन औफ को बाय द वे ये डर था कि हज़रत उमर बिन खत्ताब बड़े स्ट्रिक्ट आदमी, तो अबू बकर सदीक ने उनसे कहा कि तू देखी तू उस उम्र को नहीं जानता जिसको मैं जानता हूँ, और जिस हिल्म के साथ 10 साल 10 महीने हज़रत उमर बिन खत्ताब ने ओपननेस का पूरा कल्चर रिक्रिएट करके रख दिया। उसके बाद सहाबा इकराम में ये जरूरत थी कि सलमान फारसी ने कहा ना कि ये तूने दो कपड़े कैसे पहन लिए, तेरा तो 7 फुट का जिस्म हम पे पूरा नहीं आ रहा है कपड़ा, तेरे पे कैसे आ गए, तूने दो कपड़े पहने हुए। ये ओपननेस सिर्फ उस कल्चर के अंदर क्यों है, हमारे अंदर क्यों नहीं है? मैं अपने वाले साहब दोस्त के वाले साहब से, अपने वाले साहब से, अपने बड़े भाई से ये बात नहीं कर सकता कि ये अंकल या अबू जी ये तो मामला मुझे गलत लग रहा है। सोचें ज़रा, एक तरफ कहते हैं उमर बिन खत्ताब की बहुत टेरर था, उनके सामने एक बंदी की आई और मिस कैरेज हो गई खाली देख के, बिल्कुल था, तो मुझे क्यों उनको ओपनली बात की जा रही है। एक औरत ने हज़रत उमर बिन खत्ताब को खड़े होकर एक आयत की तफसीर चेंज करके बताई कि आपने एक आयत गलत पढ़ी, तो उमर बिन खत्ताब ने दिल उनका कि ये बद्दू औरत मुझसे ज़्यादा कुरान को जानती है। ठीक है, कोई ये नहीं हुआ कि तुम बताओगी उमर बिन खत्ताब को कि कुरान क्या है, ओपननेस चेक करें। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का मनाजरा देखें हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से, जिनके लिए दुआ है नबी अलैहिस्सलाम की कि इसको अल्लाह कुरान के इल्म अता करे, और वो पहुँचे भी इस लेवल पे कि सहाबा से उन्होंने कह दिया कि कायनात का कोई भी सवाल हो मुझसे पूछ लो, कुरान से जवाब दूंगा, और दिए भी। और मगर हज़रत आयशा ने फिर उनको मनाजरे के दौरान, मतलब ही हैड अ डिफरेंट फतवा, सूरह नजम के ऊपर चल रहा था, और हज़रत आयशा ने फिर उनको ठीक किया कि गलत पकड़ा तूने इस चीज़ को। ठीक है, ये हमारे यहाँ कभी हो के दिखाए ज़रा, गाली नहीं चलेगी तो गोली ज़रूर चलेगी मनाजरे में, या गाली या गोली, कभी भी नहीं हुआ कि मनाजरे के बाद दोस्ती और महक वो बड़े बड़े भाई भी आएंगे दोस्ती खत्म दुश्मनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज एब्सोल्यूट साइकोलॉजी में आ गई ये बात। एब्सोल्यूट साइकोलॉजी का मतलब 100% से मल्टीप्लाई करना, कि मेरा बंदा है तो 100% मोमिन है और आपका बंदा है तो, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ एक, और सबको पता है कि अगर मैं यहाँ पे नवाज शरीफ साहब की तारीफ कर लूँ, बुराई कर लूँ, नवाज शरीफ साहब ने इंग्लैंड में चोरी करे घर बनाए, तो आप सब के जहन में जो पहला तासुर आया कि अच्छा ये PTI का है।
सही,
सोचें ज़रा ये क्यों आया है, नवाज शरीफ चोर है, अचानक इमरान खान ने कहा क्यों कहा, मैं एक PTI लवर कैसे हो गया इस पर, क्यों 100%, जैसे मैंने कहा ना इमरान खान भी तो 2 नंबर रहा है सारी उम्र, अचानक इसको कौन सा सिटी, अच्छा PML की हो तुम, तुम अच्छा तुम वो पटवारी टाइप लोग हो तुम, ऑल ऑफ अ सडन दूसरा तीसरा बीच में कोई इंसान नहीं है।
बात जो कही जा रही थी क्या कही जा रही थी वो सब गई
जी जी। मस हजरत आदम के दो बेटे थे, इमरान खान नवाज शरीफ, या आप इधर हैं या उधर हैं, मतलब बाकी कोई नहीं है। मतलब कोई और भी तो लोग होंगे जिनको कोई राय होगी भाई, दोनों के अलावा भी इंसानों की राय हो सकती है जो दोनों की तारीफ करने वाले हो सकते हैं या दोनों की बुराई कर सकते हैं। ये इधर और किधर साइकोलॉजी ना, ये 100% इधर या 100%।
ये नहीं कि बंदे ने अगर कोई ऐसी बात कर दी जिससे आप डिसएग्री करते हो तो इसका मतलब उस बंदे ने जिंदगी में कभी कोई अच्छा
काम किया ही नहीं। सर जो आप, मैंने कहा ना अबू लहब के आसपास या ऊपर लिखेंगे नाम या नीचे, आपकी चॉइस है, ऊपर लिखूं या नीचे लिखूं। अबू लहब के बाद ही नाम आना, क्योंकि सर ये तो फिर बात की बात है, क्या पता वो गलत बात कर भी दी हो। मैं कमरे में एंटर हूं और मैंने वो कलर क्यों नहीं पहना हुआ, कहानी खत्म हो चुकी है। आपको पता है मोस्ट ऑफ द रिलीजियस स्पीकर्स, जो स्पीकर हैं, जो आपके सेलिब्रिटीज हैं, वो जान के ऐसी बातें करते मजबूरन करते हैं कि ये ना मेरी जो जो सुनने वाली फॉलोइंग है ये इससे मुझे जीरो से मल्टीप्लाई कर दे। तो फिरके की प्रो फिरका तारीफें भी करते रहते हैं बीच में। उनसे पूछे ना, जो मैं तो पूछता हूँ ठीक है किया आपने, कहते हैं मैं क्या करूँ, उनके कान भी तो खोलने थे, कान नहीं खोलूंगा तो दिल तक बात कह जाएगी, इसलिए मैं बरेलियों में बैठ के आला हजरत बोलता रहता हूँ ताकि बरेली सुने तो सही। इसलिए मैं देवबंदियों में बैठ के अशरफ अली थानवी साहब की तारीफें करता रहता हूँ ताकि सुने तो सही। एना सर फिर ये नफाक नहीं है तो और क्या है भाई, और क्या कर रहे हो आप वारी हो, तुम अपनी शक्ल बदल लेते हो, अपना दिल बदल लेते हो लोगों के साथ बैठ के। जैसे दिल नहीं बदलता तदरीज के साथ लेके आ रहा हूँ, बड़े बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा आपको मैं, वरना आप उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ऑनलाइन चलो एटलीस्ट समझ के चल रहा है, कोशिश तो कर रहा है कभी बरेलियों में अल्लाह हज़रत की तारीफ़ करके अल्लाह के रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा है कि फिर के बंद कर दो, मगर नहीं।
ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, मेरी एक YouTube की वीडियो थी तो जो जहाँ मैंने वीडियो शूट की थी उसके पीछे खाना काबा की रोज़े रसूल सल्लम की तस्वीर थी, तो मुझे एक कमेंट किया गया उस वीडियो के नीचे कि मूछें तो आपकी नहीं है और तस्वीरें आपने वो लगाई हैं, ये क्या है? मतलब वो उन्होंने एक खास तरीके से जोड़ा ना।
अच्छा अच्छा अच्छा, आप जरा शक्ल से देवबंदी लगते हैं, कहाँ आपके घर में बरेलवी घर में देवबंदी कैसे आ गया? और उन्होंने कहा होगा फिरौन दे कारिक मूसा, नहीं बल्कि उल्टा कहा होगा।
मैं यूके में था तो बड़ी एक बहुत जामिया मस्जिद थी और उधर एक बच्चा आया 17-18 साल का, सफ़ेद शलवार कमीज नहा के तैयार होकर जुम्मे की नमाज पे वो आया, टोपी भी पहनी हुई, छोटा मौलवी आया तो उसने उसको कहा कि मैंने अजान देनी है। उसने कहा तुम रूम में आओ मैं तुम्हारी अजान सुनता हूँ। दे बोथ वेंट अवे। थोड़ी देर के बाद वो आया, उसने कहा ठीक है तुम इधर ही अगली सफ़ में बैठो, मैं भी जैसे ही बाकी लोग आते हैं तो टाइम होता है आपको बताता हूँ, आप अजान दें स्पीकर में आके माइक में आके। तो जैसे ही वो बच्चा खड़ा हुआ और कुछ बुज़ुर्ग आके बैठ गया अगली सफ़ में, आपको पता है सफ़ों में जगह फिक्स होती हैं उधर के जो करीबी लोकल बुज़ुर्ग होते हैं,
करीबी नहीं वो जो बुज़ुर्ग हैं और जो रेगुलर आने वाले हैं वो कहते हैं राइट हमारा है,
वो हमारी राइट है। तो वो आके उधर बैठे और उस मौलवी ने उसको हेड्सअप दिया कि आप दें, वो खड़ा हुआ तो साथ ही उन्होंने इशारे करना शुरू कर दिए, इसकी दाढ़ी नहीं है इस तरह ना अगले उन्होंने, एंड देन उन्होंने इतना फोर्स किया उस मौलवी को कि आप इसे अजान ना करें और उस बच्चे को पीछे बैठा दिया गया। और कन्वेंशनली जो मौलवी आके अजान देता है उसने आके अजान दी, तो मैंने कहा ये बच्चा अब दोबारा मस्जिद तो नहीं आएगा क्योंकि इसको इतना मतलब डिस्करेज करके शैटर्ड करके इसको भेजा जा रहा है, ही विल नेवर डू।
मेरे साथ ही हुआ था, मैं बहुत अरसे बाद मस्जिद गया तो मस्जिद के इमाम साहब ने कहा आज कितों याद आ गई, उसके बाद मैं दोबारा नहीं गया और कई साल नहीं गया। तो इसी वजह से कि मैं जब जाऊंगा 2-3 दिन के गैप के बाद हफ्ते के बाद तो मुझे ये सुनने को मिलेगा कि किधर।
और फिर हम जब नमाजें और दीन की तरफ आते हैं तो हम फिर हर महफिल में बैठ के जज करना शुरू कर देते हैं, वी स्टार्टेड टेकिंग आवर सेल्फ सुपीरियर कि हम तो जन्नती हो गए हैं और बाकी आप तो जीन्स और जॉगर्स में हैं तो पता नहीं आपका तो कोई आगे।
बिल्कुल,
हजरत कहते हैं कि हजरत वासिफ रहमतुल्लाह कहते हैं, उनकी एक ऑडियो में सुन रहा हूं, उन्होंने कहा कि जिस इंसान को तुम दोजख में भेज रहे हो ना याद रखना अल्लाह उसे तुमसे पहले जन्नत में भेजेगा, सिर्फ तुम्हारा ये गुमान गलत करने के लिए, तुम होते कौन हो उसको दोजख में
तुम बताओगे कि क्या।
ये
मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, मुझे अच्छा बात आपकी इस बात से याद आ गई कि मेरे एक सेशन के दौरान बुजुर्ग ने मुझे बताया कि बच्चों को ना गलत कंपनी का नुकसान बताएं, ये बहुत मैनिपुलेटिव दोस्त होते हैं, ये कोई हीरोइन की या कोकेन की महफिल में जाते हो तो कैसे वो गले मिलते हैं, तुम्हें कितना अच्छा फील कराते हैं, फिर वो आपको मोटिवेट करते हैं, फिर कोकेन पे डालते हैं, है ना सर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं? कहते हैं हाँ बिल्कुल। अगर तो फिर ये मस्जिद में क्यों नहीं करते आप, वहाँ पे इसका उल्टा चक्का क्यों चलाया हुआ आपने? बच्चा आता है तो उसको बुलाएं मोटिवेट करें, ये टेक्निक जो रहमानी टेक्निक है ये कोकेन वालों ने पकड़ लिए हैं, आप भी पकड़ लेना, टेक्निक तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं वो मकसद उनका गलत है, ये आपने टेक्निक से क्यों अनाद रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही सेलिब्रेट करते होते हैं बच्चे को, जब वो कुरान की तरफ आए या हदीस की तरफ आए, फिर उसको बिठाते हैं, उसकी तारीफें करते हैं। हज़रत इमाम गज़ाली ने कहा कि जब एक बंदा रियाकारी में नमाज़ पढ़े और आपको दिखाने के लिए, तो उसकी रिया को हवा दोगे, क्या क्या नमाज पढ़ी, क्या रुकू है तेरा, क्योंकि रिया की बरकत नहीं होती, नमाज की बरकत होती है। तो बरकत उसकी नमाज काबू का जारी रखेगी और रिया खुद ही खत्म हो जाएगी। ये इतना बेसिक फलसफा आपको वो समझा रहे हैं कि अच्छाई को अंडरमाइन ना कर देना कभी। सो वो बाबा जी को भी वही बताया कि सर आप ही टेक्निक लगाएं, कोकेन वालों से ही सीख लें, और डांस पार्टी में जो जश्न करते हैं कि वो एक और दोस्त आ गया हमारा, कैसे उसको गले मिलते हैं, आप मस्जिद में क्यों नहीं वो गले मिल रहे।
इससे मुझे एक वाकया याद आ गया कि हज़रत वासिफ के पास रहमतुल्लाह के पास एक बंदा अपने दोस्त को लेके आया जो नशेई था, और हज़रत ने उनको पास बिठाया, चाय शाय खाना शाना सारा ना। कुछ अरसे बाद ना, खैर वो उस बंदे को पता चला कि उसका जो दोस्त था जो नशे करता था वो बड़ा ही कोई बेहतरीन इंसान बन गया, चेंज्ड मैन और बड़ा ना। तो वो गया हज़रत के पास, हज़रत से कहता है कि आप मुझे बताएं आपने नसीहत क्या की थी उससे। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने कोई नसीहत नहीं की थी, मैंने सिर्फ मोहब्बत की थी, और वो मोहब्बत काफ़ी थी उसको बदलने के लिए। इंसान हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इसी मोहब्बत का भूखा होता है, और ये ज़ुबान हर बेज़ुबान जानता है, ठीक है ना। तो जब आप उसको मोहब्बत से कोई बात करते हो तो वो कैसे नहीं बदलेगा। वो हज़रत का ही जुमला है कि इस ज़मीनी सफ़र में अगर कोई एक चीज़ आसमानी है तो वो मोहब्बत है, और ये बड़ी अता बड़े नसीब की बात,
क्या बात है।
और ये जो टॉलरेंस ख़त्म हो गई है, जिस जो आपका बेसिक क्वेश्चन था सोसाइटी के अंदर, मुझे लगता है कि ये जो मटेरियल गेन और जो रैट रेस लग गई है ना, कि एवरी सिंगल पर्सन इज़ रनिंग आफ्टर मटेरियल गेन, इसमें इतनी एरोगेंस आ गई है, और इसमें टाइम भी नहीं है आपके पास, आप रोड से ले कर हर जगह पर टॉलरेंस ही नहीं, आपने रोड क्रॉस करनी है तो गाड़ी वाला आपको थ्रॉटल दे रहा है।
इससे मुझे ना क्वेश्चन याद आ गया जी, सवाल आ।
मैं को इससे पहले जवाब याद रखिएगा, मुझे अब्दुल रहीम ग्रीन बड़े मशहूर स्कॉलर हैं, आप उनका वो वाक्य सुने कि मुसलमान कैसे हुए हैं। कहते मैं शराब के नशे में था और मुझे हदीस सुनाई गई थी कि किस तरीके से अल्लाह के नबी ने मोहब्बत की है और अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। कहते मैं शराब के नशे में धुत था और मुझे वो हदीस फिर भी याद थी कि हमारे वो किसी दाई ने उनको ना बताया कि इस्लाम की तरफ आ, हम अपने सगे बेटे को भी शराब में देख लेना तो तलवार गोली निकाल लेंगे, दोस्ती का टैग लगा हुआ होगा, मोहल्ले पूरे को पता होता शराबी कौन है, दूर हटो दूर हटो। सोचें वो बंदा कैसे अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दी, किस जब वो फुल नशे की हालत में था, कि बंदा उस वक्त मुझे जज करने की बजाय मुझसे मोहब्बत कर रहा था, हालांकि मैं उस वक्त सबसे गंदा था। इससे गंदा हो सकता है कोई इंसान के शराब के नशे में धुत बैठा हुआ हो, और उसके दौरान भी उस बंदे को बता रहा है कि अभी भी तुझे नहीं छोड़ेगा अल्लाह, अल्लाह तुझे फिर भी जफ्फी डालने के लिए वेट कर रहा है कि तू एक दफा तो सही। ये इतना बड़ा वाक्य है ना, ये बड़े मशहूर स्कॉलर हैं अब्दुल रहीम ग्रीन, कन्वर्ट हैं, पहले वो मुसलमान नहीं थे फिर वो मुसलमान हुए। तो हमने मुसलमानों को नहीं छोड़ा हुआ, वो गैर मुसलमानों को पकड़ के ले आया अल्लाह की तरफ, वो भी शराब के गटर में से, और ये देखें हमने कैसे ऐलान कर दिया, ऐलान बरात।
हजरत कहते हैं आप अल्लाह से नहीं बच सकते, आपके पीछे बुजुर्गों की नेकी और दुआएं लगी हुई हैं, और अल्लाह से बच के जाना भी किधर। तो यही है कि रास्ते खुले हुए हैं, जब तक तौबा का दरवाज़ा खुला है किसी को गुनाहगार तक मत कहो।
और हम लोग बड़ी जल्दी अगले को अल्लाह की रहमत से महरूम कर देते हैं,
यही है ना बस, यही साइकोलॉजी है।
नहीं आपकी तो आगे
हो ही नहीं सकता कुछ, आपका अब नहीं बचेगा,
अब नहीं बचेगा।
अच्छा वसीम जी, सर वसीम भाई का एक क्वेश्चन था, वो आजादी से रिलेटेड आप एक क्वेश्चन।
नहीं आपके ज़हन में भी जो एक
मैं बेसिकली ना, जो उन्होंने बोला कि जो ये इंसान इतना मटेरियलिस्टिक हो गया है और पैसा पैसा, ये बता दें कितना पैसा कमाना चाहिए, पैसा कितना कमाई, पैसा है क्या,
अच्छा
कितना जरूरी।
देखिए जिस बंदे को ये पता है उसको कितने डॉलर चाहिए, तो उसको तो अपना ही नहीं पता, उसको अपनी साइंस ही नहीं समझ आई, उसको दुनिया का इकोसिस्टम ही नहीं समझ आया, उसने कोई डॉलर वैल्यू लगा लिया कि इतने डॉलर होंगे तो काफ़ी हैं। आपकी अपनी लाइफ जो है ना वो आपको खुद बताती है कि आपकी रिक्वायरमेंट यूटिलिटी कितनी है, क्या बिजली का बिल कितना आना है, मेडिकल एक्सपेंसेस क्या हैं, फीसें क्या हैं, ये क्या, ये बेसिक यूटिलिटी है। वो यूटिलिटी आप एक्सट्रैपोलेट करते हैं बगैर किसी अपने आप को अल्लाह साबित किए हुए, और जो अपने आप को अल्लाह साबित करता है ना वो 50-50 साल की प्लानिंग करता है, उसको पता होता है समहाउ कि 50 साल जिंदा है, क्योंकि ये तो सिर्फ अल्लाह को ही पता है कि कौन कितने साल जिंदा है, हमें लेकिन पता चल जाता है। तो हमने वो डॉलर अमाउंट निकाल ली होती है मल्टीप्लाई बाई 50 years 70 years। तो जिस बंदे को ये पता हो कि उसकी यूटिलिटी क्या है, तो उसके लिए तो बहुत आसान है कि यार इससे ज़्यादा जो कुछ भी आ रहा है वो सरप्लस है मेरा, इतने तक की मुझे मेहनत रिक्वायर्ड है, कि यार इतने में मेरा आसानी से इंतज़ाम चलता रहे। दूसरी बात, ये तो वो हैं जिनके कोई मकसद मकासद नहीं है, तो वो तो मुसलमानों की उस शऊर इस्लाम के शऊर तक ही नहीं पहुँचा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर कोई कहना कि साहिल साहब आपको कितने पैसे चाहिए, तो मेरे पास एक्सपेंस शीट फिजिबिलिटी प्रोग्राम्स की पड़ी भी है सारी, फिजिबिलिटी तमाम प्रोग्राम्स की, कि जो इस वक्त इंस्टॉलेशन फेज़ के अंदर है। तो मुझे, मैं लिटरली, मैं आपको कुछ 250-300 करोड़ रुपये मांगूंगा आपसे, चाहिए मुझे इतने, क्योंकि भाई इस वक्त चाहिए मुझे, ज़्यादा भी चाहिए हो सकते हैं बाद में, कि कहाँ कहाँ पर कौन सा अस्पताल बनाना है, कहाँ कहाँ। आप मकसद बताएगा कि कितने पैसे चाहिए, पैसा थोड़ी बताएगा कौन सा मकसद बनाऊँ। ये तो हो ही नहीं सकता कि पैसा आपको अल्लाह वाले मकसद बनाए, कि मेरे पास अब 500-500 करोड़ आ गया, अब बताओ किधर किधर मस्जिदें बनानी है। कभी आज तक ऐसा हुआ है? कभी भी नहीं ऐसा, ना ही ऐसा होगा। सो उसकी हमारी बेसिक साइकोलॉजी के खिलाफ है। जो पैसे की तरफ जा रहे होते हैं, उनकी ज़रा फैसिनेशन कर्व देखें, ज़रा अल्लाह ताला ने क्यों करून के ऊपर आयतें निकाल दी हैं, सोचें। अल्लाह ना बताते उसका कितना खजाना था तो क्या फ़र्क पड़ता था, गुनाह तो कोई और थे उसके। मैं आपको आसान करके बताता हूँ, इसके बाद किसी चीज़ की कसर नहीं रहेगी। मेरा 2.5 घंटे की एक सेशन है इसके ऊपर, आपको मैं 2 मिनट में बताता हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम से ज़्यादा कोई खैर खा नहीं हो सकता उम्मत का। मेरी अम्मी भी नहीं हो सकती, आपकी अम्मी भी नहीं हो सकती, आपके अबू भी नहीं हो सकते, मेरे अबू भी नहीं हो सकते। नबी अलैहिस्सलाम की डायरेक्ट हदीस सुना रहा हूँ कि मैं तुम्हारा तुम्हारे नफ्स से भी बड़ा खैर खा हूँ, ठीक है? तमाम उम्मतियों को पता है इस बात का। आपकी अम्मी आपके लिए और मेरी अम्मी मेरे लिए, डॉक्टर साहब आपकी अम्मी आपके लिए, सबसे पहले आप सबकी दुआएं वो हैं। आपकी अम्मी क्यों, मेरी अम्मी की दुआ सबकी सेम, मेरी भी अपने बच्चों के लिए सेम है। टॉप 2 प्रेयर्स आर द सेम। सबसे पहली दुआ क्या होती है? या अल्लाह इसको सेहत दें, या अल्लाह इसको रिस्क दें, ठीक है? और तीसरी, या अल्लाह इसको 500 साल की उम्र दें। यही है कि इतना पैसा जो इसको मिल गया है तो उसके बाद टाइम भी तो गुजारे उस पैसे के साथ। ये टॉप 3 टॉप 5 दुआएं ऐसी हैं, ठीक है? चलें, कोई प्लास्टिक का, कोई ये ना समझे मुझे कि मैंने कोई बहुत जज कर दिया, प्लास्टिक जजमेंट दे रहा हूँ। लोग ईमान की भी दुआ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, अपने बच्चों के लिए, जो भी, सब के लिए। मगर ये टॉप 2-3 प्रेयर्स के अंदर इतना हमें पता है कि क्या क्या मांगना है, और हमें ये भी पता है कि हमें जो कुछ असल में चाहिए था वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मांग चुके हैं हमारे लिए। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, यार अल्लाह मेरी उम्मत पे वो अजाब ना लिए जो पिछली उम्मतों पे आते थे, इनको मोहलत दें, तौबा का दरवाज़ा खुला रखें इनके लिए। आप मुझे कहीं से साबित करके बताएं, मैं तो साबित कर चुका हूँ इसके खिलाफ क्या है, मगर आप ढूंढें ज़रा कि जो उम्मत का सबसे बड़ा खैर ख्वाह था, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद, जो सबसे बड़ा खैर ख्वाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी की सारी उम्मत के सबसे बड़े खैर ख्वाह ने एक दफ़ा भी उम्मत के लिए रिज़्क़ की दुआ क्यों नहीं की? एक ऐसे करते ना तो हम सब की 3 वक्त की रोटी और बड़े बड़े घर हमें तरके में मिलने थे, पता ही नहीं होता कहाँ से आते हैं। लोगों ने कहना था मुसलमानों को तो आसमान से आती है, बनी इसराइल को आई थी ना मनु सलवा, ठीक है? कैसे अल्लाह ने छीनी फिर, कि तुम तो इस काबिल ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर की केमिस्ट्री नहीं है कि तुम इस तरह का डिवाइन रिस्क सस्टेन भी कर सको, तुम्हारी केमिस्ट्री के खिलाफ है। खुद ही बोर हो गए थे वो, जब फुल टाइम रिस्क मिलता है इंसान खुद ही बोर हो गए, कुछ और काम बताओ भाई, ये तो नहीं होता हमसे। सो नबी अलैहिस्सलाम ने अगर हमारे रिस्क की दुआ नहीं की, इसका मतलब है कि मकसद कुछ और है, वरना वो हमारे पैसों की दुआ कर जाते, कोई रोक टोक नहीं है। अब इसकी उल्टी दुआ बताता हूँ कि नबी इस्लाम ने अपनी औलाद के लिए क्या दुआ की। शुक्र करें कि आप लोगों के लिए दुआ नहीं की, ठीक है? कि या अल्लाह मेरी औलाद कर इतना रिस्क रखी कि बस रूह और जिस्म का ताल्लुक रहे, इससे ज़्यादा ना दे दें, बस जिंदा रह लें, बस कि किस तरीके सांस चल रही है मेरे बच्चों की, ताकि कोई ये ना कह सके कि हाँ फातिमा और अली के पास तो पैसे बहुत थे ना, अल्लाह अल्लाह करना बड़ा आसान होता है जब आपके पैसे लगे होते। सोचें ज़रा, आप अपने बच्चे के लिए एक दफ़ा वो दुआ मांग के दिखाएं जो नबी इस्लाम ने अपने बच्चों के लिए मांगी है, कि या अल्लाह मेरे बच्चों को बस इतने पैसे दें कि रूह और जिस्म का ताल्लुक मेंटेन रहे और कुछ ना दें। आप कभी सोच सकते हैं मैं आपके बच्चे के लिए दुआ करूं? आपने मुझे गालियां देनी है कि तू होता कौन है इस तरह की बददुआएं देने वाला? इसको बददुआ नहीं, बददुआई समझते हैं आप अपने बच्चों के लिए, इसकी उल्टी दुआ करें। नबी इस्लाम हमारे लिए दुआ क्यों नहीं करके गई फिर, अगर इतनी थी? एक आलिम ने मुझे कहा, यार वो मुफलिसी जो है ना, वो इसके खिलाफ दुआ की वो है रिकमेंडेशन, मुफलिसी के खिलाफ दुआ किया करो, फितना है। ऐसे तो बिल्कुल है, कौन कह रहा है कि पैसे कम होने की दुआएं करें? मैं आपको ये बता रहा हूं कि पैसों की दुआ क्यों नहीं की नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे लिए या उम्मत के लिए। सबसे बड़ा खैर खा इतनी बड़ी, इतने यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को ओवरलुक कर गया। हो सकता है कि नबी अलैहिस्सलाम पैसों वाले कॉन्सेप्ट को ओवरलुक कर जाए? हुआ ही नहीं कभी। हर इंसान को पता यार कि काश, बहाना क्या रखा हमने यार, अगर ये पैसों वाला है ना, रोजी रोटी का मसला ना होता, फिर देखते मैं क्या जहाद करता। सही। फिर मैं 100,000 मस्जिदें बनाता, मदरसे बनाता, मेरे पास टाइम नहीं, पैसे बना रहा हूँ। हर इंसान ने अपना अपना बहाना रखा हुआ है। क्या 24 घंटे में से 18 घंटे तो यार पैसे में लग जाते हैं, मैं अल्लाह कहाँ से करूँ, बस पांच नमाजें पढ़ लूँ बड़ी बात।
अल्लाह की तकसीम अमीर और गरीब नहीं है, करीब और दूर की है।
बिल्कुल 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 सही कहा आपने कि ये अगर होती तो नबी इस्लाम सबसे पहली ये दुआ करते कि यार या अल्लाह मेरी उम्मत जो है वो 8-8, 10-10 घंटे बकरियां चला रही है, तिजारत कर रही है, 3-3, 4-4 महीने में उस्मान गनी गायब रहता है, मुझे वो चाहिए, मुझे उसके पैसे कर दे बस इस तरीके से, मेरे बच्चों को और तमाम उम्मत को पैसे दे दे ताकि ये तेरी तरफ दौड़े। ये अल्लाह ताला ने बनी इसराइल का मनोसलवा का वाक्या सुना के ब्लास्ट कर दिए साइकोलॉजी को कि तुम ये जिस दिन सोचोगे ना कि काश सारे पैसे हो जाते तो काम हो जाता, तो ये हुआ था उनके साथ, हो गया था सारा कुछ और उल्टी तरफ भागे अल्लाह से वो। सो दिस इज वाई मैं ज़रा इमोशनल हूँ इस कॉन्सेप्ट में कि हर बंदा, साहिल अदीम साहब आप पैसों के खिलाफ बात कर रहे हैं, इस्लाम में दरवेशी डाल रहे हैं, काश मैं डालता दरवेशी, मैं तो अगली दरवेशी बहुत आगे का लेवल होता है, मैं बेसिक इंसान के लेवल तक आने की बात कर रहा हूँ, दरवेश तो आसमान का सितारा होता है, दरवेश को छोड़ें अभी आप, और बेसिक इंसान में तो आए, किसने कहा पैसे ना बनाए, आप देखें क्यों बनाना चाह रहे हैं आप पैसे, आप अपने घर गाड़ियां चाह रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर ये तो ना कहा करें ना कि करूँ गलत है।
आपकी वीडियो में मैंने जो आपने एक वाक्य सुनाया था हज़रत बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु का कि वो जो नमाज कायम हो रही थी और फिर पहली सफ से।
जी हाँ, देखें वो एक गुलाम पहली सफ में, हज़रत अबू बकर सदीक ने देखा कि पहली सफ में जगह नहीं है, तो गुलाम से कहा कि ये दिरहम पकड़, 2 या 4 दिरहम थे तो जगह बदल ले, तो गुलाम ने कहा ठीक है आ जाएं। तो फिर नबी इस्लाम से अबू बकर सदीक ने कहा कि पैसों की यूटिलिटी या रसूलल्लाह मैंने आज निकाली है कि ये 4 दिरहम मैंने उसको दिए, पैसे काम आ गए और मैं पहली सफ में आ गया, वो दूसरी सफ में चला गया। नबी इस्लाम ने इशारा फरमाया कि अबू बकर पैसों की यूटिलिटी नहीं है, पैसा जब तेरी जेब में था ना तो तुझे उसने दूसरी सफ में रखा हुआ था, जब उसकी जेब में गया तो वो पीछे तो दूसरी सफ में आ गया। ये पैसों की नुकसान बता रहा है, फायदा नहीं बता रहा, ये बोझ है जिसको तू जितनी जल्दी शेड करेगा तो अल्लाह के करीब पहुंचेगा।
जो माल तुमने अपने जाने के बाद वैसे ही छोड़ देना है, उसे जीते जी क्यों नहीं छोड़ देते, उसे क्यों नहीं तकसीम कर देते?
बिल्कुल नहीं नहीं वो कैसे छोड़ेंगे सर, वही तो बात है ना, जब माँ बाप करप्ट होंगे तो बच्चा महा करप्ट होगा। माँ बाप ने बिलियन की दुआ मांगी होगी तो बेटा ट्रिलियन की दुआ मांगेगा, ये कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ आपको। नबी इस्लाम ने इशारा फरमाया कि अब मेरे बाद बद से बदतर के जमाने आएंगे, तो मेरा बेटा मेरे वाले जमाने से बदतर जमाने में आएगा ना। वाई वुड आई नॉट अस्यूम कि नबी इस्लाम को पता नहीं है कि क्या बात हो रही है। हर जमाने में बुराई और जड़ पकड़ेगी और ज़्यादा शाखें और ज़्यादा फल देगी। सो इट्स अ बिगर प्रॉब्लम कि अगर आप अल्लाह के फौजी नहीं बन रहे, अल्लाह के फौजी बनेंगे तब आपके घर में रेजिमेंटेशन होगी अल्लाह के कवानीन की, कि किस तरीके से भाई दुनिया को देखना है, किस तरीके से इंसानों को देखना है, और सबसे बड़ी बात किस तरीके से अपने आप को देखना है कि मैं कौन हूँ, किधर से आया हूँ, क्या करना है मैंने, इधर जाने और आने में कोई फ़र्क किया था दुनिया का कि नहीं। मैं अगर दुनिया को वैसे ही छोड़ के जैसे मैं आया था तो फिर मैं भी वही चिड़ी कवाई हूँ जो आया घोंसले से निकला, चैं चैं करता रहा, सारी उम्र चैं चैं करता रहा, क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ पर भी दाना नज़र आ रहा है, वहाँ पर भी दाना नज़र आ रहा है, आया बच्चे को बच्चे गिने सो गया, अल्लाह हाफिज़ सुबह आ गया दफ्तर वापस आया बच्चे गिने पूरे हैं सो गया। मतलब ये अपने आप को मुसलमान भी कहूँगा मैं, जो इंसान कहलाने के काबिल ना हो वो मुसलमान कहलाने के काबिल कैसे हो सकता है? हम तो चिड़ी कौवा हैं, बस घोंसले में जाएं।
वसीम भाई आपका एक क्वेश्चन था आज़ादी से रिलेटेड, वो
अच्छा आज़ादी से रिलेटेड, अभी आज़ादी पे कुछ एक वाकया हुआ बड़ा दर्दनाक कि जिसमें को कह रहे हैं लगभग 400 लोग थे जिन्होंने एक खातून को उनके कपड़े फाड़े और बड़ा मतलब इन्हीं के एक बड़ा कोई तकलीफ़ दे वो जो है जो भी जहाँ पे भी वो सोशल मीडिया पे शेयर हुई। तो ये जो हमारे माशरे में ये जो किस तरह से एक मतलब नाम के तो ये मुसलमान ही है तो कैसे एक 400 बंदा एक खातून को नुकसान पहुँचाता है, एक फ़ीमेल को नुकसान पहुँचाता है और कोई भी इंसान बीच में ऐसा नहीं है कि जो उनको रोक सके या मना कर सके? तो ये जो क्योंकि ये बिल्कुल इस वाक़े ने हिला के रख दिया, तो ये बताएँ कि ये जो सुनने वाले हैं कि ये ऐसा क्यों, मतलब हम तो बड़ी उम्मीद करते हैं कि बेहतर वक्त आएगा, अच्छा वक्त आएगा, लेकिन इस वाक़े के बाद थोड़ी हालात बड़े कोई ख़तरनाक लग रहे हैं, तो इसके ऊपर ज़रा बता दें।
दो चीज़ें, एक तो जो मॉब साइकोलॉजी होती है ना, वो मुसलमानों में हो या गैर मुसलमानों में, जब एक मिलिशिया फॉर्म होती है ना तो IQ ड्रॉप हो जाता है, इसको ही मॉब साइकोलॉजी कहते हैं। एक्चुअली IQ आधा रह जाता है क्योंकि फिर आप सिर्फ कोर्टिसोल बेस्ड बिहेवियर निकालते हैं। इसकी साइंस में मैं नहीं जाता, वैसे बता दूं कि अचानक रेला जब आपके आसपास से गुजरेगा इंसानों का, आपके बस में नहीं रहेगा, आईक्यू इतना ड्रॉप हो जाएगा कि आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं इस रेलवे का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे तो ये नहीं पता कहाँ जा रहा है, आप रेलवे का हिस्सा बन जाएंगे। इसको मॉब साइकोलॉजी कहते हैं। उस साइकोलॉजी में इंसान जॉम्बी की तरह एक्ट करता है। सो अब वो मॉब जिसने स्टार्ट की थी वो वहाँ पर क्यों पाई गई थी, ये एक असली और जेन्युइन सवाल है इधर कि वो लोग क्यों आए थे उधर। आज़ादी का लफ्ज़ तो मैं बड़ा कॉशियसली लेना पड़ता है। हमारा वो दौर है, पहले दौर में ना जो ग़ुलाम होते थे, ग़ुलाम बांदियाँ, उनको उनकी इंटेग्रिटी और डिग्निटी का, उनकी एस्टीम का तकाजा था, ग़ुलाम की भी एस्टीम का तकाजा था कि उसको पता हो मेरा आका कौन है। ये एक ग़ुलाम की मैंटेलिटी के अंदर भी ये गैरत का तकाजा था कि मैं इस बंदे का ग़ुलाम हूँ और किसी और की ग़ुलामी नहीं करूँगा। ये ग़ुलाम की गैरत बता रहा हूँ आपको, पुराने दौर में जब तक स्लेवरी रही है। हम वो दौर के ग़ुलाम हैं हम, कि हमारी गैरत इतनी खजीरों पर चली गई है कि ग़ुलाम तो अभी भी हम हैं, वो बताता हूँ किसके हैं। हम आजकल के दौर में वो ग़ुलाम हैं, इनको अपने आका का ही नहीं पता। हर तीसरा बंदा आके आकाई करता है, उसी तरीके से ताबेदारी करते हैं हम, बल्कि उस दौर में क्या ताबेदारी होनी थी जो हम खुली करते हैं। सो दिस इज़ हाउ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को एक बार पकड़ा। इंजील में ना बड़ी तफसील से वाक्य लिखा है कि अपने हवारियों को ले गए और उन्होंने कहा ये 11 गेट्स जो कि रोम ने बनाए हुए थे ना अपने दो नंबरी पेगनिज्म के अंदर, कि ये फर्टिलिटी का गेट है, ये रिस्क का गेट है, यहाँ से ना दरवाजे बनाए हुए थे उन्होंने जरूसलम से थोड़ा सा आगे। तो उन्होंने कहा ये 12 दरवाजे देखो। तो हवारियों ने कहा या रसूलल्लाह अपने ईसा को कि ये तो 11 है, इसे 12वां दरवाज़ा है नज़र नहीं आता। दरवाज़ा 12 है नज़र नहीं आता, 12वां कौन सा है कि जो मोरालिटी की डेफिनेशन हटा देगा। ठीक है, रिलेटिव मोरलिज्म, उन्होंने लिटरली ऐसे ही बोला कि इनविजिबल गेट ऑफ हेल इज़ वे बिगर देन द विजिबल गेट्स ऑफ हेल। ये जहन्नुम में जाने के दरवाजे हैं और सबसे बड़ा दरवाज़ा जो उन्होंने बनाया नज़र नहीं आ रहा कि इधर से सबसे ज़्यादा लोग जहन्नुम में जाएंगे, कि जिनको यही नहीं पता होगा कि किसके ताबेदार हैं, मगर वो किसी न किसी ऐसी चीज़ के ताबेदार होंगे कि जो अल्लाह के गैर अल्लाह की होगी, और वो अपने नफ्स को फॉलो करते हुए चलेंगे। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ ताकि आपको पता चले कि अब वो इनविजिबल गेट ऑफ हेल हमने कैसे खोला हुआ है। हर बंदा अपने आप को मुसलमान समझ के भी अल्लाह के दुश्मन और लड़कियों को पकड़ा करेगा। पैसे होते तो ये पैसों को पकड़ा होता उन्होंने, लड़की या लड़की को पकड़ लिया, कोई और कोई चीज़ होती तो उसको पकड़ लेते। मॉब साइकोलॉजी के अंदर ये वहाँ पर उनका पाया जाना जो है ना, उसके पीछे जो कॉज है ना वो बड़ी सिंपल है कि हमने बहुत रिसेंटली 425 साल कर लें टू बी अ लिटल ऑन द राउंड ऑफ, हमने एक अजीब और गरीब सी हरकत दोबारा शुरू की है जो कि जाहिलिया के दौर में ओपन होती थी। और वो क्या थी कि अपने डोपामिन सेंटर्स के अंदर हम औरत को एक पेडेस्टल दे बैठे। अरब जाहिलिया के दौर में अल्लाह पे शायरी होती थी, नेचर पे शायरी होती थी, नंबर टू जो कम तर शायर थे वो नेचर पे करते थे, टॉप के शायर अल्लाह पे शायरी करते थे, और जो निचले दौर के शायर थे वो औरतों पे शायरी करते थे। ये अरब जाहिलिया का एलीट कल्चर था, और जो शायरी नहीं जानता था उसको अजमी कहते थे कि चल तू तो फारिग है। ये हैं तीन तरह के शायर। अब इस वक्त के टॉप 10 यूट्यूब पर जाएँ, टॉप 10 वायरल वीडियोज़ और गाने सुने, तो वह टॉप के टॉप 10 जो है ना औरत के जिस्म पर शायरी के होंगे। वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के हों, तेरा जिस्म संगे मरमर का पता नहीं क्या, आफरी
आफरी आफरी मतलब वो आफरी,
तेरा चेहरा वो तो तेरा जिस्म वो, तेरी टांगें वो तो तेरे हाथ वो। औरत को इस तरीके से सिर्फ जाहलिया के दौर में ऑब्जेक्टिफाई करके ब्यूटीफाई करते थे। अल्लाह ताला ने हिजाब को जिस तरीके से प्लेस किया है ना इस दोनों जाहलिया के दौर के बीच में, आपको उसकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। अब एक लड़की जब इस तरह के फैसिनेशन कर्व के अंदर पैदा होती है ना, बाप उसका नुसरत फतेह अली खान का फ़ैन होता है, तो बेटी ने फिर संगे मरमर का जिस्म ही बनवाना ना अपना। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, उसको विरसे में मिला है कि भैया जो मेरा सेरोटोनिन का मैप है वो जो मैंने क्या बनना है, मैं अपने बाप का हीरो बनना है, तो अपने बाप का हीरो या हीरोइन।
वीडियो आई थी उस वक्त हम ना मतलब उस एज में थे, तो मुझे भी ये जब आप ये बोल रहे थे तो मुझे वो वीडियो सामने आ रही थी बिल्कुल, यानी कि हमने तो उसी से ही ना इशारा लेना है ना।
बिल्कुल बिल्कुल, तो लड़कियां जो है ना अपने जिस्म के ऊपर शायरी की आदी हैं। हमारे दौर की लड़की अपने जिस्म को ऑब्जेक्टिफाई क्यों ना करे, दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री इस वक्त जो है ना वो आर्मामेंट्स की है। क्यों? क्योंकि F-16 महंगा बहुत है, वरना इतनी बड़ी नहीं थी, इतनी नहीं बिकते। और टॉमा हॉक मिसल जो है ना, वो टैंक समेत 80 मिलियन डॉलर का पड़ जाता है। 2-2 मिलियन डॉलर का खाली एक मिसल होता है उसका, 2.5 मिलियन डॉलर का, समझाई, और 100 मिसल से काम का बंडल नहीं मिलता हमें। ये रॉकवेल उठाए ना स्टैट्स, 7 कंपनी हैं जो कि 7 ट्रिलियन डॉलर बना लेती हैं साल का ये आर्मामेंट्स की। नंबर 2 इंडस्ट्री कौन सी दुनिया की? कॉस्मेटिक्स। टॉमाहॉक का मिसल 3.5 मिलियन डॉलर का और 13 डॉलर की एक मैक की लिपस्टिक, शक्ल एक जैसी है मगर ये औकात है हमारी, हमने इस लेवल तक ले गए हैं कि सोचें जरा, मिलवॉकी से न्यूयॉर्क की F-16 की जो परवाज़ होती है ना, वो जितना जेट फ्यूल लगता है, जितनी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, पायलट की तनख्वाह और जहाज़ की कॉस्ट, वो जितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के अंदर जितनी भी औरतें हैं ना वो जितनी लिपस्टिक खरीदती हैं वो ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, रादर देन दैट F-16 फ्लाइंग टूवर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर। ये रन स्टैट्स रन करके बता रहा हूँ आपको, मेरे तरफ से थोड़ी है, ये पावर है इंसान की इस फैसिनेशन कर्व की। औरतों को हमने ऐसे फैसिनेट कर दिया है कि अपने जिस्म के एक एक हिस्से के ऊपर बाकायदा टेक्नीशियंस हायर हुए हैं दुनिया में कि फैट कहाँ से कम करना है, कहाँ पे बढ़ाना है, कहाँ पे कहाँ ग्राफ्टिंग करानी है, यहाँ तक कि पैरों के ऊपर डेफिनेशंस और सिमिट्री आई हुई है कि मेन आर वी नो हाउ टू टेक केयर ऑफ आर फीट और फीट की भी और जिस्म के हर हिस्से के अंदर इंस्टॉलेशन और डिसम्बली की भी प्रॉपर इंडस्ट्री है। ये क्यों होता है? जब नुसरत फतेह अली खान को वायरल करेंगे ना आफरी आफरी, तो फिर वो नीचे बची आफरी चाहेगी ना नीचे फिर अपनी, तो इस तरह करते करते फिर टिकटॉक के ऊपर, टिकटॉक बड़ी बेहयाई है, और बेहयाई तो आपके घर में माँ और बाप हैं बेहया जिन्होंने इस तरह की फैसिनेशन नीचे लेके आए थे। बच्चे तो वही करेंगे जो बाप का हीरो होगा, बच्चे का भी वही हीरो होगा। घर में कटरीना कैफ किस में लगाती होती हैं, माएँ जो हैं वो शाहरुख खान की फैन होंगी तो बेटा कटरीना कैफ ही ढूंढेगा मल्ले में जाके, और क्या करे वो बेचारा। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस पर आई एम टेलिंग यू। आपको जिस तरीके की PhD हमने की है ना औरत के जिस्म पे, अगर हमने आदमी के दिमाग में कर ली होती ना 1% भी, 1% भी जितना औरत के जिस्म का हमें पता है उतना आदमी के दिमाग का पता चल जाता, तो दुनिया नहीं हम किसी और यूनिवर्स को फतह कर चुके होते हम। बस बस हर बंदा, जिस बंदे से ही पूछो, बिगर टू टॉप 3 फैसिनेशन में वुमन वुमन वुमन। सोचें तो सही, हमारे तो मौलवी भी वो मशहूर हैं जो 4-4 शादियां करवाते हैं। इस्लाम के अंदर भी हमने औरत ही चाहिए हमें, हमें मौलवी क्या, इस्लाम में भी कहाँ पे वो वाला मौलवी चाहिए यार, वो 4 शादियों की टेक्निक सिखा रहा है। अल्लाह भी मिलेगा, औरत भी मिलेगी, मतलब राइट विंग भी औरत ज़्यादा, लेफ्ट विंग भी औरत ज़्यादा, तो फिर 400-400 बंदे ही पकड़ेंगे ना एक लड़की को, मिल जो गई है, कॉमन सेंस की बात है। वो तो कवाली पूरी हुई है फतेह अली खान साहब की, जिसम जो संगमरमर का जिसम को हाथ क्यों ना कोई लगाए, फिर इट्स अ मॉन्यूमेंट, पीपल आर गोना एंजॉय दैट मॉन्यूमेंट। You made the woman the object and now people are going to enjoy that object. This is an object, I enjoy it every day. You're going to make any woman this object, I'm going to enjoy that object every day as well. It's common sense, koi rocket science nahi hai isme. Aapne khud usko utility ke taur pe istemal karwaya hai. This is a problem of the father. This is the problem of the mother. This is not the problem of the children. Us ladki ka koi kasoor nahi, uske maa baap ka kasoor hai. Ki jo उस तरह की फैसिनेशन बनवा गया था कि उसके बाद उसने कहा दिस इज द अल्टीमेट एपिटमी ऑफ माय लाइफ। बस इतनी सी बात है, आप किसी एक साहबी की शक्ल दिखाएं, उसके जिस्म का हुलिया बताएं, आपको पता चल जाएगा ये ऐसी चीज़ें डॉक्यूमेंट ही नहीं होती थी उस वक्त। अभी तक लड़ाई चल रही है कि तुम 6.5 फुट के थे कि 7 फुट के थे, पता ही नहीं किसी को, ऑब्जेक्टिफाई करते ही नहीं थे इंसानों को। कोई एक वाक्य सुना दें कि जिसमें ऐसा कोई वाक्य हो कि जिसमें पता चले साहबा की फिजिकल जो है ना वो फैसिनेशन को कर्व करके खींचा करके मैंने ऐसा बना।
तो वो जो माए जो है बहुएं ढूंढ रही हैं हसीन, उनके बारे में फिर
ढूंढे ना अपने, कोई हिंदू नाम रख लिया करें, कन्फ्यूज तो ना करें ना हम लोगों को, कोई हिंदू नाम रखें, कोई राम सीता नाम रख के आया करें हमारे साथ रिश्ता लेने के लिए। ये क्या आपने फातिमा खदीजा नाम रखे हुए हैं, ये धोखा है, सिंपल धोखा है। काम सारे हिंदुओं वाले, खैर हिंदू भी इतना डिग्रेड नहीं है, सही बताऊँ आपको, इतना नीचे नहीं किया, हम तो बिल्कुल नोज डाइव करके गटर में गए। इवन हिंदू भी कहते होंगे लानत है तुम्हारे ऊपर यार, बड़े लो क्लास लोग हो। मैं आपको मिसाल बताऊं जो हमारे गुनाह है ना, मैं आपको वसूख से बता रहा हूं, ये कॉमन सेंस और मैथ की क्वेश्चन बता रहा हूं कि अबू जहल और अबू लहब ने बैठ के बाकायदा ऐसे करके तालियां बजाने के, ये मुसलमान देखो नीचे, ये हमें कहते थे दोस्त की, ये नीचे देख किस दर्जे पर जाके पहुंचा तू, दोजख में हमारे ऊपर ठट्ठे उड़ाएंगे वो कि तू बताता था हमें, हमारे नामों के लानत बरसाते थे कि ये लो निचला दर्जा तुम्हारा, वो भी हमसे ऊपर के दर्जे में होने जो हमने करतूत किए हैं। आपको मैं अबू जहल की वैसे लाइफ स्टोरी सुनाऊं तो आप कहेंगे पता नहीं क्या है, कोई अजीम लीडर की स्टोरी सुनाई जा रही है। गैरत पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था उसका, ध्यान में रखिएगा। हम लोगों ने गैरत को ऐसे नीचे फेंका, इस्लामी गैरत को, कल्चर गैरत नहीं। सो इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ द फादर एंड द मदर। ये इमरान खान नवाज शरीफ के कसूर नहीं है, ये याह्या खान अयूब खान ने नहीं किया, ये अम्मी अबू ने स्टंट मारे हैं जो पूरे हो रहे हैं अब।
और ये जो तस्वीर का दूसरा रुख है, एक रुख तो आपने दिखा दी है जो फीमेल वाली साइड से, जो दूसरा रुख है कि हम आज़ादी, यौम आज़ादी आ गई तो हमें वीज़ा मिल गया कि हम वी कैन गो मॉब के मॉब बाहर जाके पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ रहे हैं, लोगों की इज्जत आबरू के साथ खेल रहे हैं, और शोर और बैंड और बाजे और क्या कुछ हम बजा रहे हैं, रात नहीं देख रहे। मैं फजर की नमाज पे के बाद मैं वॉक कर रहा था 14 अगस्त को, इट वाज अबाउट 5:45 का वक्त था, एंड स्टिल इधर गाड़ियां गुजर रही हैं, बाजे बज रहे हैं, झंडे उठाए हुए हैं। वो वीज़ा मिल गया आपको कि आप जो वट एवर आप चाहें आप रोड पे कर सकते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी
नहीं, नहीं, नहीं इनके ये वीज़ा तो देखें, इनके ही ग्रैंड फादर जो थे ना दिवाली पे इन्हीं शहरों में 1000 साल पहले इसी तरह बाजे लेके आते रहे थे, तो वो वीज़ा इनके पास ये बहाना चाहिए होता है। हमारे परदादाओं ने दिवालियाँ ऐसी मनाई हैं, बाजे लेके औरतों को सामने जा जा के छेड़ते होते थे। मैं आपको सबूत देता हूँ, परदादा नहीं उनके परदादा भी ऐसे थे, ये पूरी कौम में ये मसला शुरू से रहा है। हज़रत अबू उबैदा ने जब बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान पे आए थे ना, तो उमर बिन खत्ताब को आप क्या समझ रहे हैं कि छोटा वाक़ है, उमर की पूरी दुनिया पर हुकूमत और पाकिस्तान में नहीं की उन्होंने कभी सोचा इस बारे में कि पूरी दुनिया पर हुकूमत उमर बिन खत्ताब की, 85% इनहेबिटेड अर्थ के ऊपर हज़रत उमर बिन खत्ताब जो थे ना वो हुकुमरान थे सिवाय पाकिस्तान के। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान पे, उनकी बाउंड्री थी पाकिस्तान पे। उन्होंने यहाँ पे आके सहाबी ने ख़त लिखा कि या अमीर उलमोमिनीन ये हालात हैं इधर, थोड़ा सुने ज़रा उस वक्त के ख़त के अंदर हालात क्या थे कि जना सेलिब्रेट किया जाता है इधर, ताकत जिस लेवल की भी ताकत एक बंदे को आती है वो अपने से कमज़ोर बंदे के ऊपर ताकत आजमा लेता है। ठीक है, औरत इस तरीके से खाई जाती है जैसे यहाँ पे तस्करी में पेश हो रही है। 19-20 उन्होंने ऐसे नुकात बताए जो ऐसे लगता है कि इस 14 अगस्त के हैं, ठीक है, यस्टरडे के हैं, क्या पता आने वाले के हों, जरदारी दौर के हैं, नवाज शरीफ दौर के हैं, इमरान खान दौर के हैं। ऐसे अगर मैं आपको सहाबी का नाम हटा के अपना नाम लगाऊं ना कि ये पाकिस्तान का नक्शा है, तो आप कहेंगे हाँ तो ऐसे ही है ना पाकिस्तान। ठीक है, तो उमर खत्ताब ने फिर क्या जवाब दिया उनको कि लकीर खींच और नॉर्थ की तरफ फिक्र का रुख कर, इतने मेरे पास टाइम नहीं, वी विल डील विद दिस लेटर, आई हैव अदर हेडेक्स टू वरी अबाउट। ये हैं हमारे सक्कर दादाओं के करतूत जो कि अभी हम पूरे कर रहे थे।
हज़रत वासिफ कहते हैं कि हमारे लोगों तक इस्लामियात पहुंची है, इस्लाम नहीं पहुंचा और जलसे जुलूस ही पहुंचे, तो यही मसला है कि
सो इट्स आज़ादी। मैंने कहा ना कि पहले वाले गुलामों को पता था किसके गुलाम हैं, हम वो गुलाम हैं जिनको ये नहीं पता कि कौन सा हक है हमारा। वी आर ओबेइंग द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट थिंग्स डिटरमिन्ड बाय द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट पीपल, उनकी हम चार्टर की गुलामी करी जा रहे हैं और अपने आप को उस चीज़ के अंदर नऊज़ बिल्ला इस एरोगेंस के साथ साबित करते हैं कि लॉजिकल भी हम हैं, आइंस्टाइन भी हम हैं, टॉम क्रूज भी हम हैं, और मतलब हर चीज़ के बेस्ट एट्रीब्यूट्स हमारे अंदर आ गए हैं और आगे से ठट्ठे उड़ाते हैं दूसरों के ऊपर, ये देख इन लोगों के अंदर सेंस ही नहीं है, ये पेंडू हिजाब करके आई हुई है, इसको तो अल्लाह ने दिया ही नहीं बस लोगों को। ये मुझे तो एक बंदे ने कहा यार ये आप इतनी दुनिया पूरी फिर रहे हैं, ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं आप, पूरी दुनिया की साइंस की डिग्रियाँ आपके पास हैं, ये आपने क्या पेंडुओं वाले काम शुरू कर दिए हैं, ये 5-5 वक्त नमाज पढ़ते रहते हो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हैं पेंडुओं वाले काम ही हैं बस, बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ तो तफरीक हो तेरे और मेरे में, तू मुझे पेंडू ही समझ यार, मेरे दरमियान में अपने इस फलसफे के दिमाग में दीवार तो खींच कि कहते नहीं कौन से शहर में चला गया, पॉम्पी से आया मेरा ख्याल है जो जो शहर इन्होंने बनाया था अपना, अपने करतूत करने पूरे करने के लिए। इट्स अ प्रॉब्लम, कहीं और बात चली जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूँ, गुलामी अल्लाह ने कुरान पाक में कहा कि क्या तूने उस शख्स को देखा है जिसने अपने नफ्स को अपना अल्लाह बना लिया है। अल्लाह ताला ने कहा है कुरान पाक में, आयत सुना रहा हूँ आपको, उस शख्स को देख जिसने अपने नफ्स को अपना खुदा बना के बैठ गया। मतलब खुद सोचें अल्लाह ताला किस तरीके से डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि किसी शक में ना रहना तो मुसलमान नहीं रहे हो, तुम्हारा अल्लाह ही कोई और है, ये अल्लाह बता रहे हैं, ये कोई یو نو کوئی اقوال زری نہیں سنا رہا ہوں, کوئی نصیحت نہیں ہے, کسی ضعیف حدیث یا کسی صحابی کا قول نہیں سنایا آپ کو کہ آپ کہیں اور اس کی سند دکھاؤ, قرآن کی آیت سنائی آپ کو کہ تو اس شخص کو دیکھ جس نے نفس کو اپنا رب بنایا ہوا ہے, اس کی تابع داری ایسے کرتا ہے جیسے کہ میری تابع داری کرنے کے لیے قرآن پکڑا اس نے. سو اٹس اے پرابلم آف ویئر ویئر آن دا سینٹر ٹیبل آف دا لیونگ روم, جب ماں باپ سینٹر ٹیبل آف دا لیونگ روم جو ڈسکشن کرتے ہیں نا, جہاں پہ وہ ہیرو ڈکلیئر ہوتا ہے, وہ والا ہیرو نیچے بچے فالو کرتے ہیں, میں نے وہ بننا ہے. اس لیے بچے سلمان خان عامر خان بن رہے ہیں کیونکہ اوپر دلیپ کمار ہیرو تھا.
میرے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا میرا بیٹا ایکسرسائز نہیں کرتا. میں نے کہا آپ کرتے ہیں؟ تو ہنسنا شروع ہو گیا, کہتا ہے یہ تو آپ نے بات ہی ختم کر دی. میں نے کہا میں نے تو بات شروع کی ہے, آپ ایکسرسائز اسٹارٹ کریں گے تو بچہ کرے گا.
بالکل صحیح بات ہے,
یہ ایکسرسائز ڈسکس کریں, اس کو فیسینیٹ کریں نا اس کو. جب تک فیسٹیویٹی نہیں ہوگی نیچے ہیروئزم نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو بچے پھر ٹک ٹاک پہ ہیرو بنیں گے اگر آپ ہالی ووڈ کے ہیرو بننا چاہتے ہیں تو, کیونکہ ان کو شارٹ کٹ مل گیا ہوا ہے. بلکہ چڑھاتے ہیں, ابو کتنے پیسے بناتے ہیں, میں آپ کو پتا کتنے پیسے بنا لیتی ہوں یوٹیوب سے, اور پھر سیلیبریٹ کیا رہتا ہے کہ بزنس سینس ہے بچی کی. آپ کو پتا پاکستان میں پورن انڈسٹری چل رہی ہے, لڑکیاں اپنے کمروں میں بیٹھ کے آن لائن ویب کیم کے سامنے فاش پورنوگرافی والی حرکتیں کر رہی ہیں اور پیسے بنا رہی ہے پاکستان میں. آپ کو پتا یہ کرنٹ اسٹیٹس بتا رہا ہوں آپ کو, آن لائن پورن اسٹار ہیں پاکستانی مسلمان بچیاں. یہ کیوں پیسے پیسے بنانے چاہیے؟ کتنے پیسے چاہیے جی دنیا میں؟ بیاں اتنے پیسے چاہیے یار, کروڑوں کی باتیں اربوں کی باتیں ہوں گی گھروں میں, تو نیچے بچے پھر بنا کے دکھائیں گے آپ کو کروڑ ارب.
چلیں آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں, انشاءاللہ اگلی نشست میں اور سوشل ایشوز کے اوپر بات کریں گے. سہیل بھائی ہم آپ کا بہت بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے ٹائم دیا اور بہت مفید باتیں ہمیں بتائیں. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو, اور امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. تو اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.